मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 20 मार्च 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोग श्री गुरु चरण रज निज मन मुकुर सुधार इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे और आज मैं इसमें जो श्री गुरु शब्द है इस पर कुछ विस्तार से बात करना चाहूंगा और वह इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी की पूरी हनुमान चालीसा है उसके केंद्र में यह शब्द विद्यमान है। मतलब दूसरी जो चीजें हैं ये श्री गुरु के चारों ओर ही घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं, बशर्ते कि आप जो गुरु शब्द है उसके अर्थ को थोड़ा सा व्यापक रूप में देखने की कोशिश करें। अदरवाइज तो देखिए हम सब के लिए गुरु क्या दिखाई देता है कि गुरु एक व्यक्ति है जिसने कुछ ज्ञान दे दिया है। सामान्य तौर पर तो हम यही मान लेते हैं कि जिसने प्राइमरी या मिडिल स्कूल में हमको पढ़ा दिया है वो हमारा गुरु है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि जिन्होंने कान में कोई मंत्र वगैरह फूंक दिया जिन्हें हम धार्मिक गुरु कहते हैं वो हमारे गुरु हैं, लेकिन इनफैक्ट गुरु का मतलब वह नहीं है। यही इसे ही हम थोड़ा सा समझने की यहां कोशिश करते हैं। तब फिर आप देखेंगे कि जो हनुमान चालीसा के जो दूसरे वाक्य हैं जो दूसरी पंक्तियां हैं उन सब का भाव आपको कुछ बदलता हुआ सा दिखाई देगा। आपको लगेगा कि नहीं, यहां जो हनुमान हैं वो मात्र एक माध्यम है, एक साइकोलॉजिकल एजेंट है जो हम में कुछ ऐसी ऊर्जा शक्ति का संचार करते हैं जो हमारे दुख और कष्टों का निवारण हो जाता है जिसकी वजह से, और करने वाले हम खुद ही होते हैं, यानी कि आप हनुमान जी पर फिर डिपेंडेंट नहीं होते। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप देखिए श्री गुरु को समझिए। श्री गुरु, गुरु के आगे उन्होंने श्री लगा दिया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। इसका मतलब है कि सबके गुरु अलग अलग होते हैं ना, श्री लगाने के बाद तो एक नाम हो गया, यानी कि सब अपने अपने गुरु के बारे में सोचिए श्री गुरु। अब ये गुरु करता क्या है? आप देखिए गुरु करता क्या है। बेसिकली गुरु हमें ज्ञान देता है, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर पैदा करता है। गु प्लस रू, इसका एक अर्थ ये भी होता है कि हमारे अंदर का जो अंधकार है उसे वह दूर करे। देखिए ओम भूर्भुवः स्वः के तहत भी हमने क्या चाहा है, हमने प्रकाश की मांग की है, हमने ज्ञान की मांग की है। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसके तहत भी हमने केवल यही कामना की है, ईश्वर से यही प्रार्थना की है, प्रकृति से ये चाहा है कि हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकें। तो प्रकाश की ओर जाना क्या है? प्रकाश की ओर जाने का मतलब है अज्ञानता से ज्ञान की ओर की यात्रा। अब सवाल यह है कि यह यात्रा कराएगा कौन? तो यात्रा कराने वाला जो व्यक्ति है वह है गुरु, और वह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसे गुरु न कहकर श्री गुरु कह रहे हैं, राइट? अब आप देखिए कि एक बहुत अद्भुत सी बात है हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा की आप चौथी पंक्ति पर आइए जो बिल्कुल शुरू में है। चौथी पंक्ति में आप क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं, याद रखिए, ये तुलसीदास नहीं कह रहे हैं, ये हनुमान जी भी नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। आप यानी कि वह व्यक्ति जो इसका पाठ कर रहा है, वह याचना कर रहा है, वह मांग रहा है। ठीक है, यहां हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हम हनुमान जी से मांग रहे हैं, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। ठीक है कि हम हनुमान जी से मांग क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं बल बुद्धि विद्या देहू मोही हरहू कलेश विकार। आप देखिए कि आप क्या मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अर्थ को समझने में थोड़ी सी शायद चूक हो जाती है, या हो सकता है कि मैं अपने ढंग से इसका अर्थ निकाल रहा हूं, आई डोंट नो। अब आप मांग क्या रहे हैं हनुमान जी से? मुझे बल दो, शारीरिक बल दो। एक शारीरिक बल भी होता है, एक मानसिक बल भी होता है, आप दोनों बल को यहां शामिल कर सकते हैं। लेकिन चलिए यहां चूंकि विद्या बुद्धि की बात और भी कही जा रही है तो यहां हम शारीरिक बल का इसे पर्याय मान लेते हैं। शारीरिक बल, शारीरिक बल जरूरी है क्योंकि जो व्यक्ति अस्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज में जो बीमार होगा, याद रखिए कि उसमें बुद्धि भी काम नहीं करेगी। ये बहुत जरूरी है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक रहे, विद्या हम अर्जन करते रहें, तो शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। तो पहली बात वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बल चाहिए। यहां बल का मतलब स्वास्थ्य से है, बल का मतलब शक्ति से नहीं है कि मैं कितने लोगों को पछाड़ सकता हूं, कितने लोगों को मार सकता हूं, कितना तेज दौड़ सकता हूं। नहीं, यहां बल का मतलब है स्वस्थता से, मैं स्वस्थ रहूं। और स्वास्थ्य को लेकर के तो आप वैदिक मंत्रों को देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के पता नहीं कितने श्लोक कहे गए हैं केवल स्वास्थ्य को लेकर। और हमारे यहां जो कहा गया है, मैं 100 वसंत देखूं, प्रार्थना की जा रही है कि मुझे 100 वर्ष की वायु मिले, तो उसमें भी बकायदे कहा गया है कि जो आयु मिले वो स्वस्थ जीवन का वायु आयु मिले। ये नहीं कि गिरते पड़ते किसी तरह से 100 साल जी लें, नहीं, पूरे स्वास्थ्य के साथ जिए। इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहां जो एक वेद लिखा गया जिसे आप आयुर्वेद कहते हैं, वो आयु का वेद है, उम्र का वेद है। उम्र का वेद का मतलब ये नहीं कि कैसे लंबा जिया जाए, सीधे सीधे हम स्वस्थ रहेंगे तो लंबा जिएंगे, तो वहां भी शब्द है आयुर्वेद। तो यहां बल को आपको इसे जोड़कर देखना होगा। फिर कहते हैं विद्या, बल बुद्धि विद्या। वो कहते हैं कि मुझे बुद्धि दो। ये बुद्धि क्या है? बुद्धि का मतलब है कि जो मेरी मानसिक स्थिति है वह संतुलित रहे, वह बेहतर रहे, वह खराब न हो। दोस्तों, कभी आप अपने दिमाग में एक इमेज लाइए, एक ऐसे व्यक्ति की इमेज लाइए जो थोड़ा सा पागल हो गया है। पागल हो गया है यानी कि उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। आप ऐसे कुछ लोगों को देख सकते हैं जो मानसिक विकार से पीड़ित हैं। उनके पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, उनके पिता बहुत ऊंचे पद पर हैं, और जो वो व्यक्ति है वो बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहा है और बहुत ही हैंडसम है, सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास बुद्धि सही नहीं है। वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ज्यादा नहीं। उसके जीवन में क्या रह जाता है, आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए। इन बातों को संवेदना के स्तर पर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें हमारे पास हैं और बिना कुछ विशेष कोशिश किए ही हैं, तो हमें लगता है कि ये तो होनी ही चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है। एक फिल्मी गीत की लाइन है, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया। तुम चले जाओगे तब हम सोच पाएंगे कि हमने क्या खोया है क्या पाया। जब तुम पास में हो ना तो समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि ठीक है ये तो होना ही चाहिए, तो हमारे पास ही है। जब चले जाओगे तो पता लगेगा कि हमने क्या खोया है। दोस्तों, जब हम इस तरीके से किसी के बारे में सोचते हैं उस चीज की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। और इसीलिए जब आप बुद्धि को इस इमेज के माध्यम से सोचने की कोशिश करेंगे तब आप सही मायने में बुद्धि की अहमियत को समझ सकेंगे। तो दोस्तों, अब मुझे क्षमा करें, वक्त हो चला है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और इसी विषय पर खूब जमकर बातें होंगी। तब तक आप लोग भी अपने अपने स्तर पर इस पर विचार करें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।